निमान तोस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम चरणं यत किं करेषु पौषा खलु काकुपानि नित्यं परस्यति शिखण्डमौले यस्या कदारश्निधे विशुखानुजाय ततके निकुञ्ज भवनाङ्गनमर्जनीस्म সবেরে পুরঞ্জন উপাখ্যান শ্রবণ কিয়া সাধারণ লোকো কে লিয়ে পুরঞ্জন উপাখ্যান বহুত হি আবশ্যক হ্যায় সমঝনা আর উসকো অনুভব করনা প্রাচীন বহির রাজা समस्त पृथ्वी में इतना यज्ञ किया, एक एक कुश के अंतर में यज्ञ कुंड बने, सारा पृथ्वी कुशों से छा गया और कितना यज्ञ किया उसका ठीक नहीं, तो भी मन शुद्ध नहीं, आत्म तत्व को नहीं जान सके, भगवत तत्व को नहीं जान सके। नारद जी की बड़ी उन पर कृपा हुई। श्रीमान शुभानंद जी ने सवेरे इसको विस्तृत रूप में कहा है, इसलिए इसमें से जो विशेष शिक्षाएं हैं उसी को मैं बतलाऊंगा। तो नारद जी उनको समझने लायक या साधारण लोगों को भी समझने लायक बनाकर ये जगत क्या है, दुनिया क्या है, ये शरीर क्या है, भगवान क्या है, हम लोगों का कर्तव्य क्या है, माया क्या है, उसमें कैसे भूल रहे हैं, इसके लिए एक सुंदर दृष्टांत युक्त दे करके उपाख्यान बतलाया, जिसको पुरंजनोपाख्यान कहते हैं। ये जो पुरंजन राजा कौन है, वो राजा हैं जीव। कौन सा जीव? जीव दो प्रकार के होते हैं, इति और चरित्र। जीव दो प्रकार के होते हैं भाई, ये दुब जीव दो प्रकार के हैं, एक बद्ध और दूसरा मुक्त। मुक्त लोग बैकुंठ गोलोक वृंदावन में भगवान की नित्य सेवा करते हैं, वो लोग नहीं जानते हैं कि ये संसार क्या है। और बद्ध जीव जो हैं ये भी बहुत से प्रकार के होते हैं, तो भी उसमें दो भाग होते हैं, एक जो भगवान के उन्मुख हैं और एक भगवान के विमुख हैं। यहाँ पर जितने जीव हैं सब भगवान के करीब करीब उन्मुख हैं, किंतु उन्मुखता में भी तारतम्य है, सभी उन्मुख एक प्रकार नहीं। जैसे सभी छात्र हैं लड़के, किंतु छात्र होने पर भी क्लास वन का छात्र एमए का छात्र एक नहीं है, अलग अलग है। इसी तरह से बद्ध जीव भी जो भगवान के उन्मुख हैं और भगवान के विमुख हैं, वो हजार हजार प्रकार की अवस्था वाले हैं। उन लोगों के लिए जो कि संसार में हैं, कुछ विमुख हैं, कुछ भगवान के उन्मुख भी धीरे धीरे हो रहे हैं, ऐसे जीवों के लिए नारद जी समझा रहे। देखो ये जीव है पुरंजन। पूरा अंजन माने क्या? पूर का मालिक, पूर को भोगने वाला, ये हुआ पुरंजन ना? ये पूर है, उसको भोगने वाला ये पुरंजन है। अच्छा कौन कौन जी? जो जीव देह प्राप्त करके समझता है कि मैं यही हूँ, देहाभिमान युक्त, वो कैसा? एक पैर वाला, दो पैर वाला, क्या हुआ जी? एक पैर वाला, दो पैर वाला, बिना पैर वाला, तीन पैर वाला, चार पैर वाला, बहु पैर वाला। भौरे एक मनुष्य को दो पैर, चार पांव, एक पैर किसको होते हैं? चौपायों को, गाय बैल भैंस इत्यादि। छह पैर किसको होते हैं? भौरे को, छठ। अच्छा एक कीड़ा होता है जिसके आदि से अंत तक इतना लंबा होता है, पैर भरे रहते हैं, हैं? अच्छा, और कान में घुस जाएगा, कहीं भी घुस जाएगा, और ऐसा पकड़ेगा जो छोड़ेगा नहीं, चिमटे से भी छोड़ाओ तो नहीं छोड़ेगा। और बिना पैर वाला कौन जानवर है? सांप, जोंक, ये सब जो चीजें हैं ये बिना पैर के, ये सब ही पूर हैं ना? ये अभिमान करने वाला, जब मैं जानवर हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, देवता हूँ, मनुष्य हूँ, गंधर्व हूँ, भेड़िया हूँ, मछली हूँ, कुर्म हूँ, ये सब जितने वाले हैं, यही ये बद्ध जीव है, ये सभी पुरंजन हैं। किंतु किसी को जो सुख संसार में अपने कर्मों से मिला हुआ है, किसी को तृप्ति नहीं है। विशेष करके जिस योनि में ये जाएगा, ये वो अपनी जोड़ी को खोजेगा। बिना जोड़ी के उसको सांप होगा तो सांपिन रहेगी, देवता रहेगा तो देवतानी भी रहेगी, मनुष्य होगा तो स्त्री रहेगी, गधा होगा तो गधी होगी, सब जगह ये दोनों हैं। ये दोनों के लिए पुरंजन नाम उसमें है, एक के लिए नहीं। अभी स्त्री तो अपने कर्मवश से स्त्री हुई है, पुरुष, फिर स्त्री भी पुरुष हो जाएगी, यदि पुरुष की चिंता करेगी पुरुष भी हो जाएगा। इसलिए ये पक्का सब समय के लिए हमारा स्त्री शरीर है और पुरुष शरीर है, ये ऐसा नहीं। दोनों ही पुरंजन को डिनोट करते हैं, उनको सूचित करते हैं। उनका सखा एक किंतु है, वो नहीं जानता, तो भी एक सखा है, बीच बीच में परामर्श देता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो कौन है? साक्षी ईश्वर है। देखो गंदा मत काम करो, झूठ मत बोलो, उसको मारो मत, लूटो मत, डकैती मत डालो, इसके साथ में ऐसा व्यवहार मत करो। अलक्षित रूप से कहता है, कभी उसकी बात मान लेते हैं, कभी नहीं मानते, अधिकांश नहीं मानते हैं, किंतु वो साक्षी केवल है, साक्षी जीवात्मा भी है इस शरीर का, इसलिए इसको क्षेत्रज्ञ कहा गया, जीवात्मा वो भी साक्षी है, किंतु वो साक्षी ऐसा हो गया कि उन चीजों को जिसके लिए साक्षी बनाया गया, उन चीजों को अपना समझने लगा और मैं समझने लगा, यही उसका दोष है। और इसमें जो ईश्वर उसके मित्र हैं, वो केवल साक्षी हैं, उसके सुख दुख का आस्वादन नहीं करते, उस पर छोड़ देते हैं, कर्म फलों में वो आबद्ध नहीं होते और जीवात्मा हो जाता है। मैं हूं, मेरा है, भगवान में नहीं होगा, इन लोगों में होगा। इसलिए देहाभिमान मैं और मेरा का प्रतीक है। एक महल है, वो महल क्या है? ये शरीर। ये महल कहाँ है? पंचाल देश में। पंचाल देश में अपनी स्त्री को, पुत्र परिवार सबको, धन जन को छोड़ करके वो घूम रहा है, और भी हमारी पत्नी से भी अच्छी कोई लड़की मिल जाए, किशोरी मिल जाए, जितना भी धन है, प्राकृतिक दृश्य, बगीचे, बाग हैं, पशु हैं, इनसे भी अच्छा हमको और कोई स्थिति मिल जाए, उसको तृप्ति नहीं होती। यही बद्ध जीव की निशानी है, वो भगवान की सेवा नहीं कर करके अपने लिए सब कुछ करता है। पंचाल देश में रहता है। पंचाल देश माने क्या? इंद्रियों के जो विषय हैं, क्या विषय हैं? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जहां पर हैं इसको कहते हैं पंचाल देश। और उस पंचाल देश में ये महल खड़ा है, कौन सा? दो पैर का, चार पैर का, आठ पैर का, दस पैर का, बहु पैर का, बिना पैर का। और उसमें सबसे सुंदर कौन सा है? दो पैर वाला यह मनुष्य नामधारी जो राजभवन है, बहुत ही सुंदर बना है। और इसमें नौ द्वार है। नौ द्वार माने क्या? नौ द्वार देखो कौन कौन से हैं, ये दो और ये दो, ये दो, ये जुड़वे द्वार हैं। अकेला नहीं, ये जुड़वा द्वार है। आजकल अच्छे अच्छे भवनों में जुड़वे द्वार होते हैं, इधर से जाकर के बंद करो, इधर से भीतर से भी बंद हो जाएगा, जब इच्छा हुई तो उधर से खोल लो, बहुत सुविधा की शरीर है ये। तो ये जुड़वा, ये कान दोनों और नाक, और एक मुख, एक लिंग और एक गुदा, छ और तीन नौ, जिसमें से सामने के जो पूर्व की तरफ में दरवाजे हैं वो कौन कौन है? दो ये, दो ये और ये नहीं, और मुख। ये सामने के पांच दरवाजे हैं ना, और एक दक्षिण की तरफ में है, दक्षिण भुजा वाला ये दक्षिण, और बाम वाला उत्तर, ये उत्तर में है। मैं पूर्व की तरफ में बैठा हूँ, ठीक एकदम वैसे ये इसका दरवाजा। और जो पश्चिम की तरफ में दो दरवाजे हैं, वो नीचे वाले दो दरवाजे, कभी इधर से घुसता है, कभी उधर से घुसता है, कभी उधर से घुसता है, माने वो जो रूप रस गंध पंचाल देश है उसमें ये भूखता है, ये इन्हीं में से सबसे है? उसमें उनकी प्यारी कौन सी है? पुरंजनी, उसकी पत्नी जी है, प्यारी पत्नी, वो है बुद्धि अथवा अविद्या, अविद्याजनक जो बुद्धि है। अविद्या माने भगवान को भूल करके इसको समझना, मैं हूं, मैं बड़ी सुंदरी हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं राजकुमार हूं, मैं राजकुमारी हूं इत्यादि, मैं बहुत बुद्धिमान विद्वान हूं, ये जो जहां पर बुद्धि है ये बुद्धि पुरंजनी है। वो भी पति खोज रही थी और ये भी पत्नी स्त्री खोज रहे थे, वही पंचाल लगर के इस शरीर में दोनों की भेंट हुई और दोनों उसमें प्रवेश किया, एक पुरुष हुई एक नारी हुई, चाहे कोई भी जोनी हो, मनुष्य जोनी के लिए ही नहीं कहा गया, किसी भी जोनी में जाओ ये दो चीज रहेंगे। अब दो अंधे भी इसमें हैं, जिसके सहारे से ये पांच जो व्यक्ति हैं ये काम करते हैं। ये दो अंधे कौन हैं? हाथ और पैर, आंख नहीं है, ये आंखों का दूसरे के बल से चलते हैं, हाथ में भी नहीं, एक मच्छी भी यदि सो रहे हैं आंख बंद करके मच्छी को भी नहीं भगा सकते, ये कहां क्या है, दोनों ये अंधे, किंतु बिना इनके कोई काम नहीं चलता, इसलिए पुरंजन जी के प्रधान अस्त्र ये अंधे दोनों सेवक हैं। और इसमें एक सांप है जो इसकी रक्षा करता है, सांप क्या है? सांप पंच प्राण, क्या प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इनके अलग अलग क्रियाएं हैं, कोई चीज मुख में दो अपने आप नहीं चलेगा, पैखाना करना है तो बेसिक चिकित्सक ने अपनी थोड़ी सी एक हवा आएगी दबा देगी निकल जाएगा, इस तरह से कोई ब्लड सर्कुलेशन कराती है, कोई कुछ कराती है, ये पांच प्राण न रहे न बस आदमी मर जाएगा, पुरंजन न पुरंजनी बस समाप्त हो जाएंगे, ये पंच प्राण है। इस प्रकार से ये लोग सब भोगने लगे। अब उसमें कुछ वर्षों के बाद में एक काल कन्या आती है, ये कौन है? ये है जमनराज की बहन। जमनराज कौन है? मृत्यु काल है। काल कब आएगा कोई ठीक नहीं, तो वो अपनी बहन को पहले भेजता है। और ये बहन कौन है? वो वृद्धावस्था, उसको कोई नहीं चाहता। नारद जी के पास में गई, नारद जी भग गए और कहा ये तुम्हारा योग्य पति वो है, पुरंजन है। नारद जी इस जगत में देखे जाते हैं, ऐसे महापुरुष लोग देखे जाते हैं, किंतु काल का उनके ऊपर में विक्रम नहीं होता। और जो भगवान का भजन नहीं करते, आत्म तत्व को ठीक से नहीं जानते, भगवत तत्व को नहीं जानते, काल उन पर अपना प्रभुत्व जमा देता है। पहले अपनी बहन के द्वारा उनको पकड़ाता है, उस बहन से कोई शादी नहीं करते। वो वृद्धावस्था कैसी, आंखें धसी हुई, पेट सरोवर जैसा गहरा, कान वैसे सूर्पनखा जैसे और नाक बड़ी भद्दी काली कलूठी, बोलने में भी बड़ी तेज तर्रार, उसको कौन पसंद करे। किंतु वो ऐसी है कि जबरदस्ती पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं है। किसी किसी को पकड़ लिया है और कोई कोई अभी बाकी हैं, वो समझते हैं कि उससे हमारी भेंट नहीं होगी, हम लोगों को तो पकड़ लिया है। और बाकी जो अभी किशोर किशोरी हैं, उन पर कुछ दिनों में उसका धावा होने वाला है, ये समझ रखो। दांत तोड़ देगी पहले, आंखों की दृष्टि निकाल लेगी, इस पर सफेद रंग पोत देगी, अपने आप शरीर की शक्ति निकाल लेगी, तुम्हारा सब जितना अभिमान है वो दूर कर देगी। ऐसे हो करके चलोगे बिना लठिए के सहारा और दम खांसते हुए दम निकल जाएगा। वो अपनी सारी सेना को बुला लेती है कालकन्या, जितने रोग हैं जितने जो कुछ हैं सबको बुला करके एक साथ में आक्रमण करती है पुरंजन के महल पर। बहुत दिनों तक 50 वर्ष की उम्र से लेकर के 100 उम्र तक लड़ाई झगड़ा चलता है। अपनी सेना से चारों तरफ उनके किले को घेर लेती है, 9 द्वारों को धीरे धीरे बंद करने लगती है और अंत में उसे परास्त कर देती है। और अंत में वो पुरंजनी की चिंता करते 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 खुद पुरंजनी जैसा शरीर लाभ करके जन्म लेती है। अभिज्ञात किंतु साथ में है, कौन? ईश्वर। वो साथ नहीं छोड़ता, बड़ी उसकी कृपा हुई। फिर कहीं उसका जन्म हुआ, कहाँ? मलयज देश में, और किसी भक्त से शादी हो गई। ये भगवान की अहेतु की कृपा है, न जाने तुम लोगों की न जाने कहाँ शादी होती, कहाँ कहाँ के रहने वाले लोग, मथुरा में, वृंदावन में, गोवर्धन में, राधा कुंड, श्याम कुंड में शादी करा, वहां पर जन्म दे दिया। ये भगवान की अहेतु की ये कृपा है, न जाने कोई संस्कार था या नहीं था कोई भी पता नहीं, किंतु हो गया। यहाँ पर हरि कथा सुनने के लिए क्यों चली आई, क्यों इनके मन में ऐसा हुआ, ये भी भगवान की है की कृपा है। इसलिए इसे शिक्षा मिलती है बहुत सी, इन शिक्षाओं को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। अंत में भक्त पति के साथ में संग हुआ और उसकी सुगति हुई, इसको इन्होंने बतलाया, उसको अधिक बतलाने की जरूरत है। किसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर मिला और इसमें गुरु जी की कृपा हुई, संतों की कृपा, ये भगवान की कृपा रूपी वायु है। इतना सुदृढ़ नौका भी पा करके यदि भगवान का भजन नहीं किया तो यह जन्म वृथा गया। इस चीज को समझ, ये भागवत के पढ़ने का उपदेशक बहुत से उपदेश देते हैं, भागवत की कथाएं कहेंगे, वो अंत में घुमा फिरा करके यही लगाते हैं, कुछ धर्म करो, कुछ दान करो, गृहस्थ धर्म में ही रहो, भगवान का भजन करो, ये भी करो, शुद्ध रूप में सबको छोड़ करके आसक्ति संसार से एकमात्र भगवान के चरणों में आसक्ति रख करके करो, ऐसा नहीं कहते। इसी चीज को और स्पष्ट करने के लिए भाई एक पीछे से गुप्त साधन बताया पुरंजन जी को नारद जी। वो गुप्त साधन क्या, एक हरिण था एक हिरणी थी ने? हरिण कौन था, वही पुरंजन। हरिणी कौन थी, वही पुरंजनी। दोनों एक सुंदर बगीचे में बड़े प्रेम के साथ में वार्तालाप करते हुए सुंदर सुंदर कोमल कोमल मधुर मधुर घासों को चर रहे हैं। पास ही में नदी है सुंदर सी, पानी भी उसमें पीते हैं। भौरे मडरा रहे हैं, कोयल कुहक रही है, तरह तरह के फूलों का सुगंध चारों तरफ में भरमा रहे हैं। बसंत की ऋतु है, ये सब चीजें हैं। उसमें मुग्ध होकर के दोनों चरने लगते हैं, भूल जाते हैं कि एक शिकारी है सामने। वो शिकारी शिकार खेलने आया और देखा जी बहुत सुंदर मोटे ताजे बहुत ही सुंदर हरिण है। बस उसने बाण संदान किया, सामने से भेड़िये कहो या उसी के सिखाए हुए शिकारी कुत्ते 8-10 लगा दिए सामने से, और एक तरफ में आग लगा दी और एक तरफ में जाल लगा दिया। यदि इधर में यदि जब उसने हिरण ने देखा, हिरण ने हिरणी के साथ में तो वो विलास कर रहा था, बड़े प्रेम के साथ में चर रहा था घास, सामने नजर आई देखा जैसे बाण छोड़ने वाला, एकदम बाण छोड़ा। अब छोड़ने की देर है, बस एकदम संधानी कर रहा था। और इधर में सभी कुछ देखो, जाल एक तरफ में, एक तरफ में आग, एक तरफ में कुत्ते शिकारी, उन पर 8-10 दौड़ रहे हैं खाने के लिए, पकड़ ही दिए हैं। इसने देखा अरे मैं तो बुरी बुरी तरह से फंसा, क्या हो गया, अब मेरा जीवन गया। उसने आंख बंद कर दिया, हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन है बस प्रभु के शरण। ये पूर्व जन्म का कुल संस्कार था, सभी के लिए संभव पर नहीं है। और कहीं हरे हरे दैया रे मरी रे मरा रे मरी रे मरा रे, डॉक्टर बुलाओ ये करो तब तक मर गए। तुलसी दल और गंगा जल भी देने को नहीं रहा। अब उसने स्मरण किया और स्मरण करते ही देखो बड़ी विचित्र लीला हुई, प्रभु बड़े दयालु, लंबे हाथ उनके हैं कृपा के। उस समय बड़े जोर से आंधी और साथ साथ में वर्षा, कंकड़ उड़ने लगे और शिकारी के आंखों में लगे, और वो बाण छूट गया, संधान ठीक नहीं रहा, वो थोड़ा सा तिरछा छूट गया और वो उन कुत्तों को लगा, और कुत्ते तो बस समाप्त हो गए। इधर जाल जो लगाया था जाल उड़ गया हवा में, और आग थी वो पानी से वर्षा से बुझ गई और अपने आप आंख मलने लगा। ये चारों तरफ से ही रास्ता खुल गया और उसने आंख खोल कर देखा, जब प्रभु वाह वाह आपकी कैसी दया, बस एकदम खुदा और कूदते हुए एकदम सर निकल गया। ये भगवान की दया है। हम लोग भी ऐसे जाल में फंसे हुए हैं, समझो जिसको हम अधिक प्यार करते हैं वो हमारा बंधन है। राजा मोरे प्रीति करे से मोर बंधन, स्त्री मोरे प्यार करे वो बंधन। पति मुझको बहुत प्यार करते हैं, किस लिए प्यार करते हैं, कहेंगे नहीं तेरे लिए करता हूं, कोई किसी के लिए नहीं, ये सब मोह है और भ्रम है। इसलिए भगवान का शरण लिया जाए। और भी इन्होंने एक बात बतलाया, भरत जी का उपाख्यान, भरत जी के उपाख्यान में देखते हैं कि भाव अवस्था तक वो साधन में चले गए। 50,000 की वयस में उम्र में वो नौजवान थे, उस समय में हजारों लाखों वर्षों की आयु होती। अपने स्त्री को पुत्र को कन्या को राज्य को मलवत पर त्याग कर दिया। मलवत माने क्या है, जब टट्टी लग जाएगी ना किसी को जोर से, यहां पर रहें रोकिए तो जितना ही रोकेंगे उतना ही जबरदस्त आएगी, जति नहीं ये संभाले ना कपड़े ये टट्टी ऐसी है। उस समय हरिकथा खूब जोर से टट्टी लगी, हरिकथा में मन लगाया खूब तो जोर से,
मन नहीं लगेगा।
यदि जाओ टट्टी को निकाल दो और फिर आराम हो जाएगा, बस। ऐसे ही ये संसार को मल समझ करके उस टट्टी को छोड़ दिया। अभी हम लोगों को कैसा लगता है? खूब आनंद लगता है, इसमें रस लगता है। अभी मल के समान नहीं ये संसार लगता। जिस समय ये मल के समान लगेगा ना, तो भक्त महाराज की तरफ में छोड़ो। किंतु इतना होने पर भी थोड़ी सी दया उन्होंने की, और वो दया थी सात्विक, तामसिक, राजसिक। ये दया उनको लेकर के बैठ गई नीचे, तीन जन्मों के लिए पीछे भगा। सात्विक दया बुरी चीज नहीं है। कोई किसी को मार रहा है हम उसको बचाएंगे नहीं, कोई भूखों मर रहा है उसको खिलाएंगे नहीं, नंगे को कपड़ा नहीं देंगे, ये तो दया है, ठीक है। किंतु तुम उसमें आसक्त मत हो। जो करेगा वो आसक्ति होने की गुंजाइश होती है, ये चीज की शिक्षा देनी है। किंतु विदेह की भांति में सब करते हुए भी मत उसमें आसक्त न हो, तो बड़ी अच्छी बात है। हिरणी के बच्चे को बचाना उनका दोष नहीं था, ये तो सात्विक दया थी। किंतु उसमें आसक्त क्यों हो गया? जो अपने बच्चे को, स्त्री को, राज्य को, सबको तो छोड़ दिया, उसमें आसक्त नहीं हुआ, तो फिर इसको गोदी में लेकर के दुलार क्यों करने लगे? अपना क्यों मान बैठे? जब वही नहीं है तो ये तुम्हारा हो जाएगा। और हुआ क्या? हिरणों के दल के साथ में उनका प्यारा एकलौता बेटा से भी अधिक प्यारा, और कुत्ते फंदते उनके साथ में चला गया। और इसकी आसक्ति होने से क्या हुई? जो सब समय भगवान का चिंतन करते थे वो आसक्ति दूर हो गई। बहुत ही सुंदर बेचारा, बड़ा सुकुमार बच्चा। इसकी धारियां कैसी हैं? ये कृष्ण सार है, जहां ये उत्पन्न होता है वही यज्ञ होता है। कितने सुलक्षण, इतना अरे तू अपने बेटे को सुलक्षण नहीं देखा, अपनी स्त्री को नहीं देखा, इसमें सुलक्षण आने लग गए। बस उसे वही याद आती, इतने में काल आया और उसकी चिंता करते करते करते। इसलिए आप लोग भी जो जो चिंता करेंगे मरने के बाद में वैसे ही बातें होंगी, इसलिए सावधान। एकमात्र कृष्ण का चिंतन करेंगे, गुरु वैष्णवों का चिंतन करेंगे, नारद जी जैसे मुक्त महापुरुषों का चिंतन करेंगे, गोपियां कैसे कृष्ण की सेवा करती हैं, ब्रज की लीलाओं का चिंतन करेंगे। और सब संसारिक स्त्री पुत्र परिवार, को कस्य भ्राता, को कस्य पिता, को कस्य माता पिता इत्यादि, कोई किसी का नहीं। इस चीज को समझो, परीक्षा कर लो। तुम्हारे पति खूब प्यार करते हैं, लड़का प्यार करता है, घर का काम दो दिन बंद करो, उनको खाने के लिए मत दो, और कहो जी अब मेरी तबीयत सचमुच में खराब हो, जल गई, थोड़ा सा कुरूप हो गया, पैर से चल नहीं सकती, कह जैसे मैंने आपकी तो 50 वर्ष सेवा की, अब दो दिन तो मेरी सेवा कर दो, करेंगे? दूसरी एक और ला करके खड़ा कर देंगे, छाती पर दलने लगेंगे। और पति भी वैसे ही पत्नी, इस सब चीज को समझो, ये बतला रहे हैं, ये भागवत का श्रवण है। लोटा थाली ले आओ और रुक्मिणी जी का विवाह करा करके, ये सब ये भागवत नहीं है। इन सब शिक्षाओं को ग्रहण करना ही यथार्थ में ये सब भागवत सुनना है। भागवत आप लोग सुनिए, राधा कृष्ण के चरणों में आप लोगों का प्रीति हो। इस तरह से क्या बतला रहा था भरत महाराज? आसक्ति मत रखो। दूसरी बात, भरत जी फिर तीसरे जन्म में ब्राह्मण होकर के आए, अब सचेत हैं। पूर्व जन्म में भगवान के प्रति उनका भाव तक हुआ था और कुछ भाव की सिद्धि हो गई थी, इसलिए पूर्व जन्म की बातें भूले नहीं, केवल स्थगित कुछ रह गया था, भक्ति स्थगित हो गई थी, किंतु मरी नहीं थी, नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए जो ही समय मिला बस फिर भक्ति पनपने लग गई। इस जन्म में उन्होंने ओंकार तक उच्चारण नहीं किया, जबरदस्ती उनके बाप ने और भाइयों ने गले में जनेऊ सूत्र के उल्टा दिया था, किंतु न तो गायत्री, न तो कुछ, न तो कुछ, ऊपर से कुछ नहीं करते, न ब्राह्मणों का कुछ नहीं करते, ऐसी कोई भी बात नहीं करते जब फिर सात्विक दया उत्पन्न हो और किसी के प्रति आसक्ति हो जाए, बल्कि इसके विपरीत वो सब काम करते। आप लोगों ने भद्रकाली इत्यादि की बातें सुनी हैं, ये कैसा उनका जीवन अब इस समय में हो गया था। भद्रकाली ने भी उनको बचाने के लिए असुरों को मार करके और उनके मुंड से गेंद खेलने लगी और उनसे कहा, ये प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ आप ऐसा छिप करके मत रहें, नहीं तो हम लोग भी नहीं समझ सकेंगे आपके महात्म को। रहुगण राजा जा रहा था, कहीं जा रहा था कपिल देव के आश्रम में, कहारों में से एक कहार बीमार पड़ गया। उन्होंने जाओ ढूंढ लाओ बेगार, बेगार जानते हैं ना, बेगार लाओ, बिना पैसा दिए हुए ले आया। देखा जैसे एक मोटा साटा नवयुवक 15-16 वर्ष का बैठा है, सब सुलक्षण है, उसको लेकर के और पालकी में लगा दिया। ये चींटी और जानवरों को देख करके चलते, पैर में पैर नहीं मिलते, हिलने लगी। राजा उस पर कुछ रुष्ट हो गए, किंतु बोले ऊपर से, जैसे हम लोगों से बोलते हैं ऊपर से मधुर और बीच से छुरी, ठीक ऐसे ही कहते हैं, प्यारे भैया अरे तुम थक गए ना, थक गए हो, अरे बहुत दुबले, खाया नहीं शायद इसलिए दुबले पतले हो गए, अरे ये शरीर भी तुमको ढोने में जबकि भार लगता है तो ये पालकी ढोने में ना जाए तुमको कितना कष्ट होता, भगवान ने शायद इसलिए तुमको बनाया नहीं, ताने मार रहे हैं, तुम कुछ खाते पीते मोटे ताजे हो जाए तो इस काम को तुम कर सकते थे। वो बेचारे कुछ नहीं बोले, समझ रहे हैं सभी वैष्णव को सहिष्णु होना चाहिए, जब फिर भी वैसे पैर होता रहे तो फिर क्या बोले, अरे तू जीता ही मर गया, तू जीता है या मर गया, नहीं जानता मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा का उल्लंघन, इतना तुम्हें दुस्साहस, घोर प्रमादी है, ऐसा दंड दूंगा और ऐसा इलाज कर दूंगा जो सदा जीवन भर के लिए तू दुरुस्त हो जाएगा। उन्होंने मुस्कुराया, भरतनी ब्राह्मण जो थे, अब मुस्कुरा करके बड़े प्रेम से उसको कहने लगे, कहाँ गया, कहाँ बदल दिया इसने, बोलने लगे, अजी महाराज यदि कुछ ढोने के लिए है तो भार तो ढोने के लिए ही है, समझ रहे हैं, जरा स्पष्ट करके कह रहा हूं, यदि भार है तो वो तो ढोने के लिए ही है और यदि मार्ग है तो चलने के लिए ही है, मार्ग किस लिए होता है, चलने के लिए होता है। देखो महाराज ये मोटापन, भूख प्यास, बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था, जुआवस्था और जगत का जो प्रेम जो काम है वह काम, क्रोध, ये सब देहाभिमान के कारण होता है, ये मुझ में नहीं है, तुम में है, भरपूर है। तुम जन्म से राजा हुआ या पहले पीछे राजा बना, मरने के बाद राजा तो बना रहेगा कि नहीं, थोड़ी सी बात सुनते ही झट पालकी से उतर गए और उनके चरणों में प्रणाम, महाराज आप कौन हैं, आप साक्षात कपिल तो नहीं, आप सनक सनंदन सनातन तो नहीं, मैं इन्हीं ज्ञानियों के लिए मैं अज्ञ हूं, हमारे ऊपर में कृपा की जाए, आप इसको जरा और अच्छी तरह से बतलाइए, आप कौन हैं। उन्होंने कहा जे देखो भरत का नाम सुना है, महाराज चक्रवर्ती भरत जी थे, भरत ऋषभ देव के पुत्र, अरे आप वही हैं, मैं तो आपको समझ नहीं सका, आप तो विश्व में आपको कौन नहीं जानता था, ज्ञान और भक्ति सबके भंडार, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, ये कहकर उनको प्रणाम किया। तब फिर उन्होंने कहा देखो तुम बड़े बड़े पंडितों की बात कह रहा है किंतु असल में तुम देहाभिमान मूर्ख हो, ऐसा कौन कहेगा ऐसे बड़े राजा को जो नंग धड़ंग हैं, शरीर पर मैल कितने दिनों की जमी हुई है, जो पवित्र को भी साफ नहीं किया और शरीर वैसा, देहात्मभिमान एकदम नहीं, ऐसे महापुरुष किससे बोले थे भी उसका कल्याण हो जाए। बोले तुम राजा और मैं प्रजा, यदि तुम राजा और मैं प्रजा हूं तो ढूंढने लायक हूं, जरूर कहूंगा, किंतु न तो तुम राजा हो न मैं प्रजा हूं, मैं न कोई मोटा हूं और न पतला है। आत्मा मोटा पतला कुछ नहीं होता, वो तो भगवान का नित्य सेवक है, उसका आत्मगत शरीर है, प्रभु की सेवा ही उसका एकमात्र कार्य है। उनकी सेवा भूलने से तुम्हारी ये दुर्वस्था है, इस चीज को समझो है? देखो रहु गणे तत् तपसान जाति इत्यादि कहते हुए बतलाई, ये जो ज्ञान की बातें मैंने कहा उन्होंने श्रीमान शुभानंद जी ने जो बतलाया वो ऐसे ही नहीं आएगा, सुनने से भी लाख बार सुनने से नहीं आएगा। कैसे आएगा? रहु गणे तत् तपसान जाति, तप से नहीं होगा, बहुत सुनने से भी नहीं होगा, बार बार सुनेंगे तभी नहीं होगा। अग्नि सूर्य और ये सब देवताओं की उपासना के द्वारा भी नहीं होगा, ब्रह्मचर्य धारण करने से भी नहीं होगा, संसार को त्याग दिया भक्त के समान उससे हो जाएगा, स्त्री पुत्र परिवार सबको त्याग दो तो भी नहीं होगा, कैसे होगा? एकमात्र जब तक कि जो महापुरुष भगवान की नित्य सेवा में अभिनिविष्ट हैं, तत्व ज्ञान से संपन्न रसिक परम वैष्णव हैं, ऐसे वैष्णवों का संग किया जाए, उनके वाणी के द्वारा अभिषिक्त हुआ जाए, उनकी चरण की धूली और उनके उच्छिष्ट और चरण धौत जल से यदि कोई अभिषिक्त हो तभी हो सकता, अन्यथा किस तरह से हो सकता, असंभव है। देखो इस चीज को समझो, एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, जाते जाते एक बाघ ने उसके ऊपर में या सिंह ने आक्रमण किया, मतवाला हाथी ने, जंगल में मोटे मोटे पोए चढ़ नहीं सका और वो एकदम अब पकड़ने वाला था बाघ, मोटे मोटे लंबे जबड़े, इसमें देखा एक अंधा कुआं, उस पर बरगद के छोटे छोटे या पीपल के पेड़ सब उगाए, देखा जिसे जल्दी से प्राण बचाने के लिए, अब पानी सूख गया है, उसके ईंट फीट नीचे चली गई हैं, अंधा कुआ इसको कहते हैं, घास से भर गया है, दिखाई नहीं पड़ा, बस झट उसको पकड़ करके दो डालों को और वो कूद गया। जब कूद गया तो नीचे कूदा नहीं, नीचे देखा सांप अजगर काला कृष्ण सांप वो डसने के लिए एकदम तैयार के फों 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 कर रहा है? देख करके प्राण निकल गए मानो, ऊपर में सिंह दहाड़ रहा कि बाघ और नीचे में ये मृत्यु रूपी सर्प, और इतने में देखा दो चूहिया आकर जिस पीपल के दोनों डालों को पकड़ करके झूल रहा है कुतरने लगी, आधा कुतर चुका है थोड़ा सा बाकी है दोनों कर रहे हैं। इतने में देखा ऊपर की डाल पर मधुमक्खियों ने छत्ता लगा दिया है और उसे लाल लाल बड़े सुंदर मधु के बूंद टपक रहे हैं, उसके मुख से ही ऐसे ही सामने से जा रहे हैं। उसने ऐसा बढ़ाया जीभ को बाहर कर दिया और उसकी मुद की एक बूंद क्या मधु क्या मधु, भूल गया जो नीचे सांप ऊपर में सांप और ये चूहे जो काट रहे हैं तो भी जाएगा, सब तरह से मरने के मुख में वो समा गया है, किंतु क्या मधुर क्या मधुर, समझो जे ये क्या चीज है। ये हम सब लोगों के जीवन में प्रतिदिन अनुभव करते हैं किंतु अनुभव नहीं करते, ये भगवान को भूला हुआ जीव संसार रूपी वन में जा रहा है, मृत्यु रूपी बाघ ने पीछा किया, हम भगे मृत्यु से डरना चाहते हैं डरते हैं, अंधा कुआ ही ये संसार उसमें लटक गए, उसमें दो पीपल के डालियां माने पुण्य और पाप, ये दो कर्म से हम ये मनुष्य शरीर में जीवित रह रहे हैं, कोई पुण्य करेगा नहीं पाप करेगा और क्या करेगा, और तृतीया पंथे मुरारी वो भक्तों के लिए वो पाप और पुण्य कुछ नहीं करते, वो क्या करते हैं, भगवान के लिए सब कुछ सेवा करते हैं, उनको पाप पुण्य स्पर्श नहीं करता। ये भागवत जो सुन रहे हैं ये पाप पुण्य से अलग है, इसकी यदि सच्ची जो उपदेश हैं सच्चे उपदेश से उसको ग्रहण करें तो वो पाप पुण्य को दिन और रात ये दोनों चूहिया हैं, एक काली चूहिया है और एक सफेद चूहा। काला चूहा माने चूहिया माने रात, और सफेद चूहा संवत्सर माने वर्ष के। ये दोनों एक एक पल करके हमारे आयु को काट रहे हैं सबका। हम कहते कितनी उम्र हुई,
125 वर्ष की।
बड़ा अभिमान, 125 कितनी उम्र हुई, 75 वर्ष की हो गई है। 75 वर्ष तेरा जो चला गया, काट दिया चूहियों ने, अब कितने दिन बाकी हैं कोई ठीक नहीं, अभिमान होता है। इसलिए वो काट रहे हैं पाप पुण्य, दिन रात काट रहे हैं। और वो सांप नीचे बैठा किया हुआ है, वो सब मृत्यु इत्यादि ये सब हैं, नीचे ऊपर सब मडरा रहे हैं। मधुमक्खी का छाता, मधुमक्खियां यदि काटे ना, यदि हिल जाए तो गाल फुला देंगी, आग फुला देंगी और मरे वो। मरने ही वाला है, एक मिनट देर नहीं। किंतु उसके छत्ते से निकल रहा है क्या, मधु, स्त्री परु पुत्र परिवार धन संपत्ति का यह जो रस है ना। कैसे विवाह होने जा रहा है, विवाह करने के लिए जा रहे हैं पालकी में, 4 लाख रुपया खर्च करके जा रहे हैं विवाह करने के लिए। क्या क्या विवाह करने जा रहे हैं? कोई ऐसा मूर्ख होता है जो काली नागनी को अपने गले में लगाए? किंतु ऐसे मूर्ख 4 लाख रुपया उनके बाप ने खर्च किया, उनकी मैया ने, और वो बड़ा मैं कहां न जाने जा रहा हूं। और 2 दिन के बाद में तलाक, 3 दिन के बाद में गोली से मार दिया, बस यही संसार का सुख। ये मधु है उनका प्यार, समझो इस चीज को। इसमें रक्षा एक ही चीज से हो सकती है। उसी समय आंख बंद करके, उनको भी छोड़ करके, डालियों को और सबको छोड़ करके, एकमात्र हे प्रभु आप ही रक्षक हैं, मैं तुम्हारा हूं, जीवन सर्वस्व आपके चरणों में, उन गुरु और वैष्णव के चरणों में आश्रय लेना ही वो है। ये सब बातें सुनाई इन्होंने, मैंने दुरक्ति किया तो अभी आप लोगों को समझाने के लिए। अब यहाँ की कथा आगे से आरंभ होगी, और फिर खूब ध्यान दे करके सुनिए, और अधिक से अधिक लोग आए। गत वर्ष तो भीड़ इतनी थी सुनने में जो वहाँ तक भी जगह नहीं रहती थी, किंतु ना जाने क्यों लोगों की श्रद्धा कम हो गई, या अपने सखी सहेली और अपने साथियों को आप लोग नहीं बुला रहे। सबको निमंत्रण दे करके इसमें बुलाना चाहिए, इस सब में उनका भी कल्याण हो, आप लोगों का भी कल्याण। इसलिए दूसरे दिन ये मैं चाहता हूँ ये सब भर जाए, अपने अपने घर से, अपने अपने मोहल्ले से सबको बुलाई। बड़ी अच्छी कथा हो रही है कि नहीं मैं नहीं जानता, तभी कहेंगे बड़ी मधुर कथा हो रही है। इस प्रकार से सबको बुलाए, एकदम सब
राधा बड़ सुंदर श्याम हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि राधा बर सुंदर श्याम हरि गोविंद हरि गोपाल हरि रविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि
नगर लेखन जावे दयाल हरि गोविंद हरि गोपाल बंदन कृष्णदास कृष्ण करे।